व्याकरण भूषण सार के पिछले पाठ में जो दूसरी कारिका को बताया गया था, फल व्यापार योर धातु आश्रयेतु तिंगस्मृता फले प्रधानम व्यापार तिंगर्थस्तु विशेषणम्। इसका सामान्य अर्थ मैंने पिछले पाठ में बताया था, आज हम विशेष अर्थ की चर्चा करेंगे। और ग्रंथकार कौंड भट्ट ने जो इस कारिका की व्याख्या की है उसमें बहुत ही शास्त्रार्थ है, मीमांसक और न्यायिक के मतों को बता करके फिर उसका खंडन किया गया है और व्याकरणों के सिद्धांत को सिद्ध किया गया है। तो इन तमाम बातों को हमें यहाँ पढ़ना होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जब आप पढ़ रहे होते हैं भूषण सार को तो नोटबुक जरूर सामने रखिए और कलम सामने जरूर रखिए, और आपको लगे कि इसमें कुछ नोट करने वाला है तो उसे नोट जरूर करते चलिए। ऐसे मैं भी बीच बीच में कहता रहूँगा कि आप लिख लीजिए इसको, और मैं लिखा भी दूँगा, और बड़े ही धैर्य से बड़े ही जो है इत्मीनान से हमें इस शास्त्र को पढ़ना है। क्या है कि ये आचार्य कक्षा का ग्रंथ है, इससे पहले मध्यमा प्राक शास्त्री और शास्त्री की पढ़ाई होती है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने मध्यमा प्राक शास्त्री शास्त्री की पढ़ाई नहीं की है, जो परंपरा क्रम से पढ़ करके आते हैं उनको थोड़ा बहुत नॉलेज जो है पहले से ही इस ग्रंथ का रहता है, उसका बेस बना हुआ रहता है, तो उसको पढ़ने में समझने में ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन आप लोग आधुनिक परंपरा से आए हैं, बीए पास करके आए हैं, तो आपको जो है थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करना होगा, ज़्यादा एकाग्रता रखनी होगी, ज़्यादा नियमितता रखनी होगी, और जो याद करने वाली पंक्तियां हैं उसको याद करनी होगी। मैंने कहा हुआ है कि जितनी भी कारिका है उसको तो आप याद कर ही लीजिए, और बीच बीच में जो नोट करने वाली बातें होंगी उसको भी नोट करके आपको याद करना है। और ये ग्रंथ ऐसा है कि इस ग्रंथ को अगर ध्यान से आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो वाद विवाद में आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। किस तरह से दूसरे की बात का खंडन करना है और अपनी बात को जो है कैसे जो है प्रमाणित करना है, ये तरीके आप इस पूरे ग्रंथ को पढ़ लेने से आप समझ जाएंगे, और फिर समाज में जो है आपका महत्व इस कारण से बढ़ जाएगा कि आप जो कहना चाहेंगे ना उस बात को सबसे आप मनवा लेंगे, और दूसरे अगर आपका खंडन करते हैं तो उनकी बात का आप भी तुरंत खंडन कर सकेंगे। इससे तार्किक बुद्धि, तार्किक क्षमता जो है आपकी वो बहुत ही बढ़ जाती है, और शास्त्र का ज्ञान तो आपका को होगा ही होगा। तो चलिए इन सब बातों को कह करके अब फिर नए सिरे से इस कारिका की व्याख्या को पढ़ता हूँ, और ग्रंथ के अनुसार जो है इस व्याख्या को हम लोग समझते हैं। तो इसमें ये क्या है कि धातु का अर्थ बताया गया है और तिंग का अर्थ बताया गया। पहली पंक्ति जो है कारिका की, फल व्यापारयोः धातुः, इस पंक्ति से धातु का अर्थ बताया गया कि धातु के दो अर्थ होते हैं, फल और व्यापार। और आश्रयेतु तिंगः स्मृताः, इस पंक्ति के द्वारा तिंग का अर्थ बताया गया है कि तिंग का अर्थ होता है आश्रय। एक चीज़ यहाँ जान लीजिए, अब हम लोग आचार्य कक्षा में हैं तो थोड़ा सा जो है ना अब शब्द का स्तर जो है, शब्द प्रयोग का स्तर बढ़ाना है। अर्थ जो कहते हैं ना, शब्द और अर्थ, तो ये तो बचपन से ही हम लोग कहते आते हैं शब्द और अर्थ। अब जो है ना शास्त्र की भाषा में इसको शब्द को अगर कहना होगा तो हम कहेंगे वाचक, और अर्थ को कहना होगा तो हम कहेंगे वाच्य। तो शब्द और वाचक ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, और अर्थ और वाच्य ये दोनों भी पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस तरह से अगर हम फल व्यापारयोः धातु को कहना चाहें तो बचपन वाली भाषा में अगर कहें तो कहेंगे कि धातु शब्द है और धातु शब्द का अर्थ जो है फल और व्यापार है। लेकिन अब शब्द के स्टैंडर्ड को बढ़ा करके अगर कहना चाहें तो कहेंगे कि फल और व्यापार वाच्य है और धातु उन दोनों का वाचक है। इसी तरह से आश्रयेतु तिंग स्मृता को कहेंगे तो कहेंगे कि तिंग वाचक है और आश्रय उसका वाच्य है। फिर तीसरी पंक्ति जो है और चौथी पंक्ति जो है कारिका की, उसमें विशेष से विशेषण भाव को बताया गया है कि वाक्य ये पद का प्रयोग होता है, वाक्य का प्रयोग होता है, तो पद के प्रयोग में तो एक ही पद रहता है, तो जब एक ही पद रहेगा तो उसमें विशेष विशेषण भाव नहीं होगा। विशेष विशेषण भाव होने के लिए कम से कम दो तो होने चाहिए ना, जो कि एक विशेष होगा और दूसरा विशेषण होगा। तो ऐसी संभावना वाक्य प्रयोग में होती है जब हम किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं, जैसे चैत्रः तण्डुलं पचति, ये वाक्य है। तो इस वाक्य में तीन पद हैं, चैत्रः तण्डुलं और पचति। तो जब एक से ज्यादा पद होंगे, एक से ज्यादा पदार्थ होंगे, तो वहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि कौन विशेष्य होगा और कौन विशेषण होगा। तो वाक्य का जब प्रयोग हम करते हैं तो उस समय के लिए ये तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति है। तीसरी पंक्ति में कहा गया कि फले प्रधानम व्यापार, कि वाक्य प्रयोग के समय में क्या होगा कि जब फल अर्थ भी रहेगा और व्यापार अर्थ भी रहेगा तो उसमें विशेष विशेषण भाव कैसे होगा, माने कौन विशेष होगा कौन विशेषण होगा। तो कहते हैं कि व्यापार प्रधानम, प्रधानम माने विशेष्यम, माने व्यापार जो है वह विशेष्य बनेगा और फल जो है वह उसका विशेषण बनेगा। ऐसे ही तिंगर्थस्तु विशेषणम, तिंग का जो अर्थ है वह वाक्य के प्रयोग में विशेषण ही हमेशा रहता है, वह कभी विशेष्य नहीं होता। तो इस तरह से बहुत ही संक्षेप में अगर कहा जाए कारिका का अर्थ तो कहेंगे कि धातु के दो वाच्य होते हैं फल और व्यापार, फिर तिंग का एक वाच्य होता है आश्रय, फले प्रधानम व्यापार माने फल और व्यापार के बीच में व्यापार विशेष्य होता है और फल भी उसका विशेषण होता है। अतिंगर्थस्तु विशेषणम, अतिंग के जो अर्थ होते हैं वो हमेशा विशेषण ही रहते हैं, वो कभी विशेष्य नहीं होते। इस तरह से हमने बिल्कुल जो कारिका का शाब्दिक अर्थ है उसको हमने बताया। अब इसमें बहुत सारी शंकाएँ आपके मन में भी उठ रही होंगी और ग्रंथकार उन शंकाओं को समझ करके सारी बातें बताएंगे। अब जैसे कुछ शंका मैं आपके मन में अभी उत्पन्न करता हूँ। इन्होंने कहा कि धातु के दो वाच्य हैं फल और व्यापार, तो आपके मन में शंका होगी कि ये फल क्या होता है, फल किसे कहते हैं, व्यापार किसे कहते हैं। ऐसे ही कहा कि तिंग का अर्थ आश्रय होता है, तो आपके मन में उठेगा कि ये आश्रय मतलब होता है आधार, जिस पर कोई चीज़ जो है ना रखी जाती है या जिसमें कोई चीज़ रहती है। जैसे बर्तन में पानी रखेंगे तो पानी का आश्रय क्या हो गया, बर्तन हो गया, पानी का आधार बर्तन हो गया। तो तिंग का अर्थ अगर आश्रय है तो वह आश्रय किस टाइप का होता है और उसमें कौन जो है जा करके रहता है या कौन उस पर जो है बैठता है, तो इस तरह से आश्रय के बारे में जिज्ञासा होगी। फिर जो है फले प्रधानम व्यापार में जो इन्होंने कहा कि व्यापार विशेष होता है और फल विशेषण होता है, तो आपके मन में शंका होगी कि क्यों ऐसा होता है, इसके विपरीत क्यों नहीं होता है, फल ही क्यों नहीं विशेष होता है, व्यापार ही क्यों नहीं विशेषण होता है। तो ये क्यों का जवाब भी जो है आपको ढूंढना होगा। और फिर तिंगर्थस्तु विशेषणम कहा कि तिंग के अर्थ जो है वो हमेशा विशेषण होते हैं, तो इसमें भी ये प्रश्न उठेगा कि ये हमेशा विशेषण ही क्यों नहीं होते हैं, ये विशेष क्यों नहीं होते हैं, और अगर विशेषण होते हैं तो ये किसके विशेषण होते हैं। तो इस तरह से अनेकों प्रश्न आपके मन में उठेंगे। इसके साथ साथ और भी प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये जो कारिका में सिद्धांत बताया गया ये वैयाकरण सिद्धांत है, माने वैयाकरणों के अनुसार ये सिद्धांत बताया गया। लेकिन धातु का क्या अर्थ है, तिंग का क्या अर्थ है, विशेष विशेषण भाव कैसा होता है, इसके बारे में मीमांसा दर्शन में भी जो है ना विस्तृत चर्चा की गई है और न्याय दर्शन में भी विस्तृत चर्चा की गई है। तो ये भी आपके मन में जिज्ञासा उठेगी कि चलिए व्याकरणों के मत में ये होता है कि फल और व्यापार धातु का अर्थ है, आश्रय चिन्ह का अर्थ है, व्यापार विशेष होता है और फल व्यापार का विशेषण होता है, अतिंग का अर्थ जो है विशेषण होता है। ये तो व्याकरण दर्शन के अनुसार या व्याकरण शास्त्र के अनुसार ये सिद्धांत हुआ, लेकिन मीमांसा दर्शन में धातु का अर्थ क्या माना जाता है, तिंग का अर्थ क्या माना जाता है, विशेष विशेषण भाव कैसा होता है, ऐसे ही न्याय दर्शन में ये सब कैसा होता है, इस तरह से भी मन में आपके शंका उत्पन्न होगी। तो इन तमाम शंकाओं का निराकरण जो है आपको भूषण सार के पाठ में इस ग्रंथ को पढ़ते समय में आपको समझ में आएगा, इसका निराकरण जो है आप समझ लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो एक प्रश्न उठाया जा रहा है आपकी पुस्तक में, पुस्तक की पंक्ति को देखेंगे, धातु इत्यत्र स्मृतः इति वचन विपरिणामेन अन्वयः। इसमें एक नया शब्द है वचन विपरिणामेन। वचन आप जानते हैं ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वचन मतलब होता है संख्या और विपरिणाम कहते हैं परिवर्तन कर, विपरिणाम माने परिवर्तन। तो वचन विपरिणाम माने वचन परिवर्तन, माने एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन कर देंगे वही होगा वचन विपरिणाम। असल में यहाँ समस्या क्या है कि ये जो आपने कारिका अभी पढ़ी है फल व्यापारी धातु आश्रय हेतु तिंग स्मृता, इसमें आप देखिए कि क्रियापद जो है ना, क्रिया समझते हैं ना, जैसे ग्रामम गतः, तो गतः जो है क्रिया है, या ग्रामम गच्छति, गच्छति जो है वह क्रिया है। ऐसे ही इस कारिका में स्मृताः आश्रयेतु तिंगः स्मृताः, ये स्मृताः जो है ना ये क्रियापद है और यह इसमें बहुवचन है। तो अच्छा, क्रियापद एक ही है लेकिन इस क्रियापद का बहुवचन जो क्रियापद है स्मृताः, इसका कर्ता दो है, एक है तिंगः और दूसरा है धातुः। आप तो जानते हैं ना कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, जैसे रामः रहेगा तो कहेंगे रामः गच्छति, और रामाः रहेगा तो कहेंगे रामाः गच्छन्ति। तो यहाँ पर जब तिंगः, तिंगः जो है ना ये बहुवचन है, तिंग तिंगौ तिंगः, तो तिंगः बहुवचन है तो इसकी क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। तो तिंगः स्मृताः, यहाँ तो ठीक है, कर्ता भी बहुवचन है और स्मृता भी बहुवचन है, लेकिन धातु के साथ गड़बड़ है, क्योंकि धातु जो करता है वह एक वचन है, धातु धातु धातवः, तो धातु एक वचन में रूप बनता है और इसके साथ जो क्रिया होगी वो भी एक वचन वाली होनी चाहिए ना, स्मृतः होनी चाहिए, लेकिन कारिका में स्मृताः बहुवचन बताया है। तो अब यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है, समस्या ये आ रही है कि अन्वय कैसे होगा। अन्वय कहते हैं संबंध को, एक के साथ दूसरे का पद, एक पद के साथ जो दूसरे पद का संबंध होता है, या एक पदार्थ के साथ दूसरे पदार्थ का जो संबंध होता है उसका नाम है अन्वय। तो संबंध होने के लिए समान होना जरूरी है ना, क्योंकि समान में ही संबंध होता है, असमान में संबंध नहीं होता। तो एक वचनांत अगर करता है तो एक वचनांत क्रिया के साथ अन्वय होना चाहिए, बहुवचनांत अगर करता है तो बहुवचनांत क्रिया के साथ अन्वय होना चाहिए। अब यहाँ दिक्कत ये है कि तिंगह कर्ता जो है यह बहुवचनांत है, तो इसके साथ स्मृताः ये क्रियापद होगा तभी अन्वय होगा, और धातु जो है एक वचनांत है, इसके साथ स्मृतः जब एक वचनांत होगा तभी अन्वय होगा, माने संबंध होगा समान होने के कारण। लेकिन कारिका में तो एक ही कहा स्मृताः, स्मृतः तो बोला नहीं, तो कैसे जो है धातु के साथ स्मृताः का अन्वय होगा, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि धातु एक वचनांत है और स्मृताः बहुवचनांत है। तो ये जो समस्या आई इसके समाधान के लिए ग्रंथकार कहते हैं कि धातु इत्यत्र स्मृतः इति, क्या कि धातु का जब अन्वय करेंगे ना उस समय में एक वचन बना लेंगे, स्मृताः के बदले स्मृतः कहेंगे, तो क्या होगा फल व्यापारयो हो धातु स्मृतः, इस तरह से एक वचनांत के साथ एक वचनांत का अन्वय कर लेंगे। और जब बहुवचन वाली बात आएगी तिंगह होगा तो कहेंगे कि आश्रय हेतु तिंगह स्मृताह। इसमें वचन विपरिणाम करने की जरूरत नहीं है, वचन परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी जो है कारिका में बहुवचनार्थी प्रयोग है। तो जब धातु के साथ अन्वय करेंगे स्मृत पद का, उस समय में स्मृताह के बदले स्मृतः कर लेंगे, बहुवचनांत के बदले एक वचनांत करके, और फिर दोनों का अन्वय करेंगे, दोनों का संबंध करेंगे। ये इस तरह से समाधान निकाला। तो प्रश्न ये था कि धातु एक वचनांत है, स्मृताह बहुवचनांत के साथ अन्वय कैसे होगा। इसका जवाब दिया कि स्मृताह जो बहुवचनांत है इसमें हम वचन विपरिणाम करेंगे, इसको एक वचनांत बना लेंगे, स्मृताह के बदले स्मृतः कर लेंगे, फिर धातु स्मृतः, इस तरह से दोनों एक वचनांत हो जाएंगे और दोनों का अन्वय हो जाएगा। इस तरह से एक प्रश्न और एक समाधान जो है इन्होंने शुरू में बताया। और अब जो है ये बताना चाह रहे हैं कि आपके मन में जो मैंने शंका उत्पन्न की थी, जिज्ञासा उत्पन्न की थी कि ये फल क्या होता है, व्यापार क्या होता है, ये सब, तो उसके बारे में अब ये ग्रंथकार बताते हैं। पंक्ति देखिए किताब में, फलम विक्लित्ति आदि। ये फल जो है ना दो तरह का होता है, एक लौकिक फल और एक शास्त्रीय फल। तो लौकिक जैसे ये खाना पकाना जो क्रिया है, पचती जो क्रिया है, उस पचती क्रिया का लौकिक फल होता है भूख मिटना। क्योंकि हम खाना खाते हैं तो खाना खाने का फल क्या मिलता है, हमारी भूख मिट जाती है, बुभुक्षा शांति होती है। तो यह जो है ना लौकिक फल हुआ, लौकिक माने व्यवहार में होने वाला फल। और एक दूसरा फल होता है शास्त्रीय फल, माने शास्त्र की दृष्टि में उसका फल होना। तो शास्त्र की दृष्टि में पचती का जो फल है, माने पाक क्रिया का जो फल है, वह विक्लित्ति होती है। आपने ये नया शब्द सुना होगा विक्लित्ति। ये विक्लित्ति क्या है, तो अब देखिए जैसे चावल है ना, चावल को पकाते हैं तो भात बन जाता है। अब चावल में क्या है कि कठोरता रहती है और भात में जो है ना कोमलता रहती है। तो जब हम चावल में पचती करते हैं, पाक क्रिया करते हैं, तो उस चावल में कठोरता के बदले कोमलता आ जाती है। यह जो कोमलता है ना, इसी का नाम है विक्लित्ति। ये विक्लित्ति शब्द बार बार आपको सुनने में आएगा इस ग्रंथ में। तो अभी आप समझ लीजिए कि कठोरता के स्थान पर जो कोमलता आती है चावल आदि में, अन्न में, उसी कोमलता का नाम है विक्लित्ति। तो शास्त्र की दृष्टि में जो है पच धातु का माने पाक क्रिया का फल भूख की शांति नहीं है बल्कि विक्लित्ति है। क्योंकि जब हम पाक क्रिया करते हैं तो क्या होता है कि चावल जो है वह कोमल बन जाता है। और विक्लित्ति आदि कहा, आदि मतलब इसी तरह से अन्य भी फल होते हैं। तो आदि से हम ले लें जैसे विद्यालयम गच्छति, तो विद्यालयम गच्छति में, गच्छति में कौन सी धातु है, गम धातु है। तो गम धातु का जो है ना फल क्या होगा, तो वहाँ पर संयोग फल होगा। क्योंकि जब हम विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय के साथ हमारा क्या होता है, संयोग होता है। ऐसे ही जब वृक्षात पत्राणी पतंती, ये जब कहेंगे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वहाँ पर पतती जो क्रिया है, पतन जो क्रिया है, उसका अर्थ क्या होगा, तो विभाग होगा, माने वृक्ष से पत्ते का विभाग हो जाता है। इस तरह से फल क्या होता है, तो शास्त्रीय फल हम लेंगे, लौकिक फल नहीं लेंगे। और शास्त्रीय फल क्या होगा, विक्लित्ति होगा, संयोग। जैसे पच धातु रहेगी तो विक्लित्ति फल होगा, गम धातु रहेगी तो संयोग फल होगा, पतति में पत धातु रहेगी तो विभाग अर्थ होगा। इस तरह से फल के बारे में इन्होंने विवेचन किया। आज यही पाठ रखते हैं।